मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 1 अक्टूबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी संत राम लोधी का, जो चंदेरी मध्य प्रदेश से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। फ्रेंड्स, मुझे आज आप सबको कुछ सूचनाएं देनी है। पहली सूचना है हमारे ऑनलाइन के जो पेड स्टूडेंट रहे हैं उनके लिए कि परसों रात में आप लोगों के मेल पर जो एक स्पेशल ऑडियो में बीच बीच में आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं वो भेज दिया गया है, आप सब एक्सेस कर लें, आपके मेल पर वह अवेलेबल होगा ऑनलाइन पेड स्टूडेंट के लिए। दोस्तों, इसी के साथ ही जो सूचनाएं मैं आपको फ्राइडे को दिया करता हूं, यानी कि जो मुझे कल देनी थी वो आज ही देनी है। क्यों ऐसा हो रहा है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि कल 2 अक्टूबर है, राष्ट्रीय अवकाश है, तो डेफिनेटली कल डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा। इसके बाद फिर शनिवार और रविवार आ जाता है, तो अब लगातार 3 दिनों तक डेली ऑडियो लेक्चर आप लोगों को अवेलेबल नहीं होगा। और ठीक इसी तरह से कल जो आपको प्रेस क्लिपिंग्स दी जाती हैं, चूंकि राष्ट्रीय अवकाश है, वह भी प्राप्त नहीं होगी। लेकिन शनिवार को फिर आपको चीजें उसी पैटर्न पर मिलेंगी जिस तरीके से हर शनिवार को आपको मिलती हैं, यानी कि आपको प्रेस क्लिपिंग्स मिलेंगी, साथ ही साथ योजना मैगजीन के 2 आर्टिकल हिंदी और इंग्लिश के मिलेंगे। दोस्तों, इस बार मैं आपको कुरुक्षेत्र के आर्टिकल प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, ऐसा मैं जानबूझकर कर रहा हूं, क्योंकि अब कुरुक्षेत्र में ऐसा कोई बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है जो मैं आपको उपलब्ध कराऊं, तो अनावश्यक रूप से केवल देने के लिए दे देने के सिद्धांत पर मैं काम नहीं करता हूं। और साथ ही साथ आप लोगों को बकायदे एक वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं परीक्षा हॉल में 4 अक्टूबर को आप सब में से जो प्री एग्जाम में बैठेंगे उनके लिए कुछ बातें बताना चाहूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी बातों को, दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। बाबरी मस्जिद ध्वंस का जो मामला था, 6 दिसंबर 1992 में जो घटना घटित हुई थी, आप देखिए कि उसका कल फैसला आया है। अखबारों में बहुत विस्तार के साथ फैसला क्या रहा है वो दिया हुआ है, न्यूज़ और न्यूज़ चैनल्स पर भी इसकी काफ़ी बात की गई है और होनी ही थी, तो आप वहां पढ़ सकते हैं। सिंपल सी बात है कि फैसले में ये बताया गया है कि शुरू में ये आरोप लगाया जा रहा था कि नहीं, ये पूर्व नियोजित घटना थी, लेकिन साक्ष्य में ऐसा कुछ नहीं मिला है कि ये पूर्व नियोजित कोई घटना थी, इसीलिए जितने भी आरोपी थे उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो एक आप कह लीजिए कि कोर्ट का फैसला है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से मुझे नहीं लगता कि यह फैसला कोई ज्यादा महत्व रखता है, परीक्षा की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से तो बहुत महत्व रखता है। यहां 1-2 पॉइंट हैं जो आप अपने दिमाग में रख करके कभी इस्तेमाल इनका कर सकते हैं। अब आप देखिए कि यह फैसला कितने सालों के बाद आया, अखबारों में मेंशन भी किया हुआ है, 28 के बाद यह फैसला आया है, मतलब इसको आने में 28 लग गए। जैसा कि देखिए कि कुछ संगठन कह भी रहे हैं कि इस फैसले के विरोध में वो हाई कोर्ट जाएंगे। अब हाई कोर्ट कुछ वर्ष ले लेगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अगर हाई कोर्ट के फैसले से वो संतुष्ट नहीं हुआ या कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ तो। तो अब आप सोच करके देखिए कि जो जस्टिस ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में भी वो कितना डिले होता है, कितनी देरी होती है। और यही नहीं, बल्कि जो आरोपी बनाए गए थे, टोटल 49 लोग इसके आरोपी बनाए गए थे इस मामले में, उनमें से 17 तो अब इस दुनिया में रहे ही नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी है और अभी यह फैसला आया है। तो दोस्तों, हमारे यहां खासकर जो न्याय के बारे में एक बहुत प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया जाता है, देरी से मिलने वाला न्याय वस्तुतः न्याय ही नहीं होता। तो यहां आपको वह एक उदाहरण दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, आज के अखबारों में आपको 1-2 बहुत महत्वपूर्ण बातें और पढ़ने को मिली होंगी। पहला तो यह है कि आज के लगभग सभी अखबारों ने कवर किया है कि हमारे यहाँ के जो 8 प्रमुख उद्योग हैं उनके उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है और उसमें से केवल 2 सेक्टर्स ठीक ठाक काम कर रहे हैं, जिसमें एक कोयला है और दूसरा उर्वरक का, बाकी सेक्टरों में बहुत तेजी के साथ नहीं, लेकिन अभी गिरावट बनी हुई है। अब ये देखिए जो 8 प्रमुख उद्योग ये क्या है, बस इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा। इंडेक्स का नाम आपने सुना है और अखबारों में लगातार आप पढ़ते भी रहते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, सीपीआई, फिर थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको आप डब्ल्यूपीआई कहते हैं। फिर आपको एक और इंडेक्स के बारे में पढ़ने को मिलता है, जो उसकी चर्चा अक्सर होती रहती, वो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP। तो ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन इसके बाद 8 जो बहुत ही आधारभूत उद्योग हैं, मुख्य उद्योग हैं, उनका भी अलग से सूचकांक बनाया गया है, जिसे कहा ही जाता है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। याद रखिए, कोर इंडस्ट्रीज, इसमें केवल 8 जो हमारे बहुत ही आधारभूत, या कह लीजिए कि जो औद्योगिक जगत की न्यू तैयार करते हैं, उन उद्योगों को शामिल किया गया है। और सब इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो हमारे 8 उद्योग हैं, इन 8 उद्योगों का जो कंट्रीब्यूशन है पूरे के पूरे हमारे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में, वो नियर अबाउट 40% का है। तो ये कितने बड़े उद्योग होंगे आप सोच लीजिए, कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 40% केवल इसी का योगदान होता है। तो ये 8 उद्योग कौन कौन से हैं, मैं बस आपको नाम बता दे रहा हूं, और इस पर आपको थोड़ी सी तैयारी कर लेनी चाहिए। रिफाइनरी, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। दोस्तों, सच पूछे तो जब अखबार में आप इस तरह की खबर पढ़ते हैं, तो एक अवसर होता है जब आप इस तरह के जो छोटे छोटे मामले होते हैं, जो जानकारियां होती हैं, आप कह लीजिए कि उनको रिवाइज कर सके। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 8 प्रमुख उद्योग हैं, इसके बारे में लगभग 3-1 साल पहले प्री एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि निम्न में से कौन से उद्योग 8 उद्योगों में आते हैं, कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया गया था। दोस्तों, एक और खबर है जो बहुत कम अखबारों में आपको शायद कहीं पढ़ने को मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अभी जो कृषि से संबंधित जो विधेयक पारित किए गए हैं और उसको लेकर के जो किसानों के द्वारा उग्र आंदोलन हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए खबर ये छपी है कि जो नेफेड है, एक संस्था है, आपने नाम सुना होगा नेफेड, NAFED, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, थोड़ा सा लंबा सा है, हिंदी में है ये भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, और बहुत पुरानी संस्था है, 1958 में बनी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो स्थापना की गई थी वो 2 अक्टूबर को की गई थी, और भारतीय इतिहास में 2 अक्टूबर की जो तिथि है वो क्यों महत्वपूर्ण है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेफेड बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके बारे में आपकी तैयारी होनी भी चाहिए। ऑनलाइन लेक्चर्स में बकायदे इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड की गई है। इसने एक घोषणा की है, और घोषणा ये की है कि जो नेफेड है वो पूरे देश में 1 साल के अंदर 100 से अधिक मंडियां स्थापित करेगा, अब मंडियां बनाएगा। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले भी इस तरह की प्राइवेट मंडियां बनी है, चौपाल वगैरह जो आप सुनते हैं ना, वो प्राइवेट मंडियां हैं। तो ये नेफेड मंडियां बनाएगा, 100 से अधिक मंडियां बनाएगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मंडियां हैं ये PPP मॉडल के तर्ज पर बनाई जाएंगी, यानी कि नेफेड तो होगा ही, साथ ही साथ जो हमारे किसान उत्पादक संगठन हैं, FPO जिसे आप कहते हैं, साथ ही साथ जो हमारी सहकारी समिति हैं, उनके सहयोग से इनका संचालन होगा। यानी कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो तो नेफेड तैयार करके दे देगा, और इसके बाद फिर जो इनका डे टू डे जो संचालन किया जाएगा वह इन समितियों के द्वारा किया जाएगा। और ये बहुत ही मॉडर्न किस्म की मंडियां होंगी, मतलब किसानों से संबंधित सारी चीजें यहां अवेलेबल होंगी, सारी चीजें अवेलेबल होंगी। उदाहरण के तौर पर बकायदे वहां तौलने के लिए आधुनिक मशीन होगी, नीलामी कहां होगी, जो उत्पाद होगा उसका स्थान होगा, उनकी छटाई कैसे हो, उनकी पैकिंग कैसे हो, जो अनाज आया उनको सुखाने के लिए किस तरह की जमीन हो, इन सारी की सारी व्यवस्थाएं वहां उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही साथ छोटा मोटा कोल्ड स्टोरेज भी होगा, कोई किसान लाया है उसका टमाटर नहीं बिक पाया तो भैया ठीक है आप उस कोल्ड स्टोरेज में रख दीजिए, गोडाउन होंगे। तो इस तरह से बहुत अच्छे मॉडर्न तरीके के आप मंडियां कह लीजिए नेफेड तैयार करेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो आपको मालूम होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जो प्रारंभिक परीक्षा में जो स्टूडेंट अपीयर होंगे 4 अक्टूबर को, उनके प्रति बहुत बहुत अपने पूरी टीम की ओर से और अपनी ओर से मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आपको अपने प्रयास में सफलता प्राप्त हो। फ्रेंड्स, मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं। जो आपको तात्कालिक रूप में करना है। पहली बात तो यह है कि बेहतर होगा कि आप एक दिन पहले जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है उसे देखाएं। मस्तिष्क पर इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। सब बातें मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, है ना। फिर दिमाग में नहीं रहता कि अरे सेंटर कहाँ है और कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनेशन की डेट है 4 अक्टूबर, उस दिन आपका दिमाग बहुत हल्का होना चाहिए, आप अपने को बहुत ही फ्री महसूस करें, तो कम से कम ये एक झंझट दिमाग से निकल जाएगा। दूसरी बात कि जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में पेपर मिलेगा, तब सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि आप अपने बैलेंस को कैसे बनाकर रख सकें, यानी कि आपका पेशेंस लूज नहीं होना चाहिए। देखिए, हो सकता है कि आप पहला क्वेश्चन पढ़ें वो बहुत कठिन हो, दूसरा पढ़ें वो भी कठिन हो, तीसरा पढ़ें वो भी कठिन हो, चौथा पढ़ें वो भी कठिन हो। हो सकता है कि 5-7 क्वेश्चन आप पढ़ते चले जा रहे हैं और सब क्वेश्चन आपके कठिन हो आपको लग रहे हैं, आप उन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपकी मानसिकता क्या होगी? लगेगा कि नहीं नहीं भैया, ये पेपर तो मुझसे सॉल्व नहीं होगा, ये बिल्कुल बेकार है, मैं तो फेल हो जाऊंगा, कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही आपके दिमाग ने ये सोचा, तो जो आपने सोचा है वो सच में हो जाएगा। आपको मालूम है कि जो पेपर आते हैं वो 4 ग्रेड होते हैं, A, B, C, D। तो हो सकता है कि आपके आपको जो पेपर मिला है उसकी शुरुआत ही कठिन प्रश्नों से हुई हो, पहली बात। बाद में भी और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आने हैं जिन पर आपकी तैयारी होगी। दूसरी बात कि अगर सच में चलिए सभी प्रश्न कठिन हैं, तो केवल आपके लिए कठिन नहीं है, सबके लिए कठिन है। तो जब सबके लिए कठिन हो जाएगा तो कोई बात नहीं, कट ऑफ मार्क्स गिर जाएंगे। अभी कट ऑफ मार्क्स मान लीजिए कि 50% आ रहा है, तो वो गिर करके 40% हो जाएंगे, 30% हो जाएंगे, तो आप लूजर कहां से हैं? देखिए, ये परीक्षा नहीं है, ये प्रतियोगी परीक्षा है, कंपेरेटिव मामला चलता है इसमें, तो आने दीजिए कठिन। लेकिन आपको लगातार अपने दिमाग पर नियंत्रण बनाए रखना है और बिल्कुल जैसे एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ अंत तक, जैसे योद्धा लड़ता है ना, अंत तक उसके शरीर का एक एक अंग लड़ता रहता है, वैसे ही मानसिकता के साथ आपको क्लास के अंदर प्रवेश करना है। यदि संभव हो सके तो आप अपने पॉकेट में 2-4 चॉकलेट रख लें, अगर चेकिंग के बाद वो अलाउ कर लेते हैं तो ठीक है, अगर अलाउ नहीं करते हैं तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। चॉकलेट की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको बहुत परेशानी होने लगे, घबराहट होने लगे, तो सामान्यतः अगर आप थोड़ा सा ग्लूकोज ले लेते हैं किसी भी फॉर्म में, तो फिर घबराहट थोड़ी सी कम हो जाती है। शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो थोड़ा सा संतुलन आ जाता है, दिमाग की घबराहट कम हो जाती है। दोस्तों, आप पहला पेपर देंगे, इसके बाद बीच में आपको थोड़ा सा गैप मिलेगा। बेहतर होगा कि आप इस गैप में किसी से बात न करें कि भैया इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, तुम्हारा पेपर कैसा बना, उससे अब कुछ नहीं होना जाना है। आप अपने दिमाग को शांत रखिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ भी ले लीजिए, स्नैक्स जैसा, बहुत ज़्यादा भारी भोजन मत कीजिए, और बस शांत भाव से आप फिर से सेकेंड पेपर के आने की तैयारी करिए, बस दैट्स ऑल। और फिर जो सेकेंड पेपर है दे करके आने के बाद, अब आपको जिससे भी जो बातें करनी है वो आप करें, आपके लिए बहुत जरूरी है मानसिक संतुलन को बनाए रखने की। तो दोस्तों, कुछ बातें मैंने बहुत ही व्यावहारिक किस्म की आप से बताई हैं, एक बार फिर से मैं आप सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहूँगा। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सब देख ही लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। इन्हीं में से 2 दोस्तों के नाम हैं, अखिलेश यादव BHU वाराणसी से हैं और गौरव साव, आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, अब 3 दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का भी ख्याल रखें, मेरी शुभकामनाएँ स्वीकार करें और अभिवादन भी। नमस्कार।